कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कल आपने सुना ना, व्यास जी महाराज ने पर्वत पर, सुमेरु पर्वत पर तपस्या की। भगवान शंकर प्रकट हुए और कहा कि तुमको आकाश जैसा निर्लेप, वायु जैसा सबको प्राण देने वाला, जिलाने वाला, अग्नि के समान तपस्या में प्रदीप्त, जल के समान शीतल और पृथ्वी के समान धैर्यवान तुमको पुत्र मिलेगा। तो सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ, अरणि मंथन से हुआ। फिर वहां नारद जी आए। नारद जी ने उनको कहा कि जो आपकी विद्या है, व्यास जी को कहा, आपकी विद्या है ये बराबर अभ्यास में चलते रहना चाहिए। तब उन्होंने सुखदेव जी को वेदाध्ययन करवाया। एक दिन फिर व्यास जी महाराज, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के पास नारद जी आए। नारद जी की बड़ी पूजा की गई। नारद जी ने कहा कि हे धर्मश्रेष्ठ व्यास नंदन सुखदेव, बताओ मैं तुम्हें क्या बात बताऊं, तुमको कौन सी श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करूं। तुम जो इस समय कुछ बात पूछने के इच्छुक हो, बताओ मैं तुम्हें क्या सुनाऊं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि इस लोक में जो सबसे हितकर वचन है वो सुनाइए। नारद जी महाराज कहने लगे कि देखो, आज तक जितने संत महापुरुष ऋषि मुनि हुए हैं, उन सब ने एक बार सनकादि ऋषियों से प्रश्न किया कि संसार का हित किस में है। तो सनकादिकों ने उपदेश दिया, नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है। जहां संसार में राग होगा वहां दुख होगा ही। और नास्ति त्याग समम सुखम, जहां त्याग होगा वहां आनंद का निवास रहेगा। एक बार कांदा 60-70-80 रुपया किलो या 80 रुपया किलो, लोग क्या आगे महाराज कांदा 80 रुपया किलो या मान लो गांव पर इतो से असर नहीं पड़ी हो, क्या आप कांदा खावा ही को नहीं, 80 रुपया किलो हो जाए, 100 रुपया किलो, 200 रुपया किलो। और दाल साग ए महंगा हुए, दाल महंगी हो जावे, और भाई गेहूं महंगा हो गया, दाल महंगी होगी। तो क्या है कि दाल है, गेहूं है, इनका अपन सेवन करते हैं, इसमें राग है हमारा, वो सेवन ही नहीं करते, उसका त्याग किया तो उससे संबंधित कभी दुख होता ही नहीं। ऐसे त्याग रखना चाहिए और पापों से निवृत्त रहना चाहिए। अपने अंदर समझ लेना चाहिए कि पाप है, इसके सामने सुख है, लेकिन है ये पाप तो नहीं। सद्वृत्ति समुदाचार है, हमारी वृत्ति अच्छी, सदाचार का पालन करना चाहिए। देखो सुखदेव, सनकादि ऋषियों ने बताया कि मानुष्यम असुखम प्राप्य, जो परम आनंद की प्राप्ति के लिए मानव जीवन मिला, लौकिक सुख भोगने के लिए नहीं मिला है, वो इस शरीर को प्राप्त करके विषयों में आसक्त होता है, वो मोहित होता है विषयों में, और वो दुख के मोक्ष के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता है, उस आदमी का कभी भी दुख किसी भी हालत में छूटने वाला नहीं है। ऐसे आदमी की बुद्धि बड़ी चंचल रहती है, मोह जाल के अंदर पड़ी रहती है, सब उपाय से काम और क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर लो, ये महान दैत्य है। इसलिए हमारे कल्याण को नष्ट करने वाले दो राक्षस हैं, काम और क्रोध। यदि कोई तपस्वी है तो उसको क्रोध से रक्षा करनी चाहिए, क्रोध न जाने कब उसकी तपस्या को क्षीण कर दे। और श्रियम रक्षेत च मत्सरात्, और मात्सर्य दोष आ जाएगा तो आदमी की शोभा लक्ष्मी सब खत्म हो जाएगी। मात्सर्य दोष डाह, आपकी उन्नति होगी मेरी नहीं होती, डाह पैदा हो गई कि देखो साहब आपकी तो हो गई, आपको लोग पूछते हैं हमको नहीं पूछते, मेरे मन में डाह पैदा हो जाएगी, इससे लक्ष्मी का नाश होता है। और मान और अपमान के अंदर पड़े रहेंगे तो विद्या नष्ट हो जाएगी, पढ़ा लिखा कुछ काम का नहीं, सत्संग वगैरह कोई काम नहीं आएगी। किसी ने मान कर दिया तो खूब राजी हो गए, अपमान कर दिया तो दुखी हो गए। और आत्मानं तु प्रमादतः है, और अपने स्वरूप का ज्ञान करना हो तो प्रमाद से बचाओ। प्रमाद माने न करने वाला काम करना। अपने अंदर क्रूरता का त्याग करना ये बहुत बड़ा धर्म है। कभी क्रूर मत बनो, कठोर मत बनो। सबसे बड़े सबसे बड़ा बल है मनुष्य के पास तो क्षमा है, क्षमा करो। सबसे बड़ा ज्ञान है तो अपने स्वरूप का ज्ञान है। मैं वो एक बात बड़ी विचित्र बोलते हैं, ये कहने में सत्य बहुत ऊंची चीज है, पर सत्य वचन से भी ऊंची चीज है हितकारी वचन बोलना। उस सत्य से भी बड़ी चीज है, सत्य से वचनम श्रेय है, सत्यादपि हितम वदेत, सत्य की अपेक्षा हितकारी बात कहो। जो हितकारी बात है हमारी दृष्टि में वो सबसे बड़ा सत्य है। अपने अंदर ये संकल्प छोड़ दो कि अब मेरे को ये करना है और ये नहीं करना है, कोई संकल्प मत रखो। वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा ही विषयों का उतना ही सेवन करो जितने से शरीर का काम चलता हो। पदार्थों को आसक्त बुद्धि से मत स्वीकार करो। इससे आपके अंदर स्वतः ही शांति का अनुभव होगा। किसी वस्तु को गौर से मत देखो, किसी के साथ बहुत ज्यादा गहराई से संभाषण मत करो, सबसे अलग होकर के रहो, नहीं तो विषयों का संस्कार अपने अंदर पड़ता जाएगा। आकिंचन्यम माने अपने पास कोई वस्तु का संग्रह मत करो, जो वस्तु जितनी काम आए बस उतनी रखो, ज्यादा संग्रह मत करो उसको, और जो जैसी मिल जाए उसमें संतोष करो। जब संतोष होगा तो कामना नहीं होगी, तो चित्त चंचल नहीं होगा। जो अपने पास परिग्रह है, जो वस्तु है, उस वस्तु से ममता हटाओ कि इन वस्तुओं पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। जिन आदमियों ने शोक का त्याग कर दिया है वे व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होते हैं। भोगों के कारण से व्यक्ति दुखी होता है। जो आदमी परमात्मा को जीतना चाहे उसको बहुत मननशील और संयमशील होना चाहिए। जब व्यक्ति बहुत शुभ कर्म करता है तब वो देव योनि में जाता है, पुण्य कर्म करता है तो, और जो शुभाशुभ मिला हुआ कर्म करता है उसको मानव शरीर में आना पड़ता है। कल्याण के लिए मानव शरीर ऊंचा होता है। मानव शरीर में जरा मृत्यु आदि का दुख मनुष्य अज्ञान से स्वयं उसमें जानबूझ करके भोगता है। अहित में हितकारी बुद्धि कर लेता है, अनर्थ में अर्थ देखता है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने मुंह से लार निकालता है और फिर वो उसमें फंस जाता है, जैसे मकड़ी अपने अंदर से जाल निकालकर उसमें फंस जाती है, ऐसे जीव है वो अपने ही विचारों से संसार में फंसता है। सुखदेव, संसार को इतना बड़ा सामर्थ्य किसी ने नहीं दिया है कि वह जड़ होकर के किसी चेतनवान को अपने चंगुल में फंसा ले। जीव जान करके फंसता है। अलम परिग्रहण है, वस्तुओं का बहुत संग्रह मत करो। दोषवान ही परिग्रह, सारे दोष, बहुत बड़ी वस्तुओं का संग्रह होगा तो उसमें दोष ही दोष पैदा होंगे, इस बात को समझना चाहिए। जंगल में कोई तालाब है, तालाब में थोड़ा पानी है और उसमें एक बुड्ढा हाथी चला गया। अब वो हाथी जैसे दलदल में फंसता है, ऐसे ही संसार के अंदर पुत्रदार कुटुंबेशु सकता है, स्त्री पुत्र कुटुंब के अंदर फंस गया वो। अब वो निकलने का प्रयत्न करता नहीं है, और करे तो वो फंसा हुआ ऐसा रह गया कि बिना सत्संग के निकल नहीं सकता। जैसे बड़े बड़े मछले हैं कभी पकड़ में नहीं आते, लेकिन कोई बड़ा सारा जाल डाल दिया जाए तो वो उसमें फंस जाता है, ऐसे ये जीव परिवार के स्नेह जाल के अंदर फंस गया। स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश होते हुए सारी सृष्टि से विलक्षण है, दिव्य है, लेकिन अपने को भूल गया और मोह जाल में फंस गया। पानी के अंदर मछली को कौन पकड़ ले भाई? आप पानी में जाओ, यू मछली को पकड़ो, सर निकल जाएगी यू पानी के साथ। लेकिन जाल डाल देते हैं तब वो मछली के जाए, जाल में फंस जाती है। ऐसे स्नेह जाल के अंदर फंस गए भगवान के अंश होकर। ये संसार के कुटुंबी, पुत्र स्त्री आदि, शरीर धन संपत्ति, ये परकीय वस्तु है ऐसा मानेगा तब तो वो ठीक है, नहीं तो संसार में फंस जाएगा। देखो सुखदेव, गहराई से देखो, इस संसार की दौड़ धूप के अंदर हम सब प्राणी लगे हुए हैं, पर यहाँ कोई ठहरने की जगह नहीं है, विश्राम स्थली नहीं है और कोई सहारा देने वाला नहीं है, कोई सहारा निभाने वाला नहीं है और हमारे पास रास्ते का खर्चा भी नहीं है, अपना कोई देश नहीं, अपना कोई साथी नहीं, ऐसे अंधे होकर इसमें जा रहे हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए विद्या है, कर्म है, शौच है, ज्ञान है, इनका सहारा लेना चाहिए। लोगों के बीच में बैठ करके संसार की चर्चा करते रहोगे तो वो निबंधनी रज्जु रेशा, ये बाल संसार में फंसने की डोरी है, इसमें फंस जाओगे। इसलिए इन सब को छोड़ो। ये पांच भूतों का जो शरीर है जिसमें अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की चीजों में दुर्गंध भरी पड़ी है, इसमें आसक्ति लेकर सोचो कि क्या लाभ मिला। इन सब बातों को जब व्यक्ति समझता है तब सुख और दुख और जीना मरना, इससे ये ऊपर उठ जाता है। ज्ञान की जितनी बातें हैं वो अपने गुरुजनों से, बड़ों जनों से सीख करके धारण करना चाहिए। जो अव्यक्त परमात्मा है, जो इंद्रियों से अतीत है, मन से अतीत है, आप उसकी खोज में जाओगे तो इंद्रियों का प्रवाह विषयों से हटेगा और इंद्रियां अंतर्मुखी होंगी, मन अंतर्मुखी होगा, बुद्धि अंतर्मुखी हो जाएगी। ये जब अंतर्मुखी हो जाएंगी, बाहर नहीं दौड़ेंगी, तो सुखदेव आपको अपनी चीज अपने अंदर ही मिल जाएगी। अनादि निधनम जंतुम आत्मनि स्थितम अव्ययम, वो अपने में ही स्थित है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने में स्थित है। परंतु मनुष्य इधर तो ध्यान देता नहीं है। जैसे बच्चा है वो कुपथ्य करके अपना नुकसान करता है, ऐसे जीव मोह के अंदर विषयों का सेवन करके अपना नुकसान करता है। इसलिए सुखदेव तुमको शोक दूर करने वाले शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। संसार में कहां तक तुम शोक करोगे? शोक करके शोक मिटा लोगे क्या? शोक स्थान सहस्राणि भय स्थान शतानि चे दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडितम। हजारों हजारों शोक की जगह है यहां संसार में, सैकड़ों भय करने की जगह है और प्रतिदिन ये शोक और मोह की बातें सुनने में आती रहती है। ये सब पर प्रभाव डालती है, केवल एक पंडित पर, विद्वान पर, समझदार पर, आत्मज्ञानी पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता है। बुद्धि को वश में रखो। शोक इसी का ही तो होता है ना, कि जो हमारी प्रिय वस्तु थी, प्रिय व्यक्ति था, वो चला गया, तो उसको रखना अपने हाथ की बात नहीं है ना। जहां आपका अभी वर्तमान में बहुत ज्यादा राग है, प्रेम है, उसके अंदर आप दोष देखना चालू करो। दोष देखने से वो राग खत्म होगा। बीती बात को लेकर के शोक करते हो, मां शोक करती है कि ऐसा मेरा बच्चा ऐसे मेरे पास खेलता था, चला गया, तो माताजी वो बच्चा तो ऐसा था ले, अब है क्या? कि अब तो नहीं है, चला गया ना, चला तो गया, तो बीत गया, वो उसका अभाव हो गया। अब शोक करने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सभी प्राणियों का संयोग होते होते वियोग होता है, इसलिए शोक का अवसर कहीं भगवान ने तो रखा ही नहीं है। मृतम वा यदि वा नष्टम, कोई मर गया हो या कोई वस्तु नष्ट हो गई हो तो दुगुना दुख हो गया वो। एक तो वो चीज चली गई, एक शोक और किया, दो कष्ट हुआ। महाराज जी एक बार किसी जगह पर पधारे थे, रास्ता भूल गए, तो रामाधार जी वगैरह कई पास में थे, कहा कि महाराज जी रास्ता भूल गया, ही हो गया महाराज जी, हो गया महाराज जी। महाराज जी ने कहा देख एक गलती तो हो गई, अब भय करने से चिंता करने से इससे क्या दूसरी गलती क्यों करे, एक गलती बहुत है, अपने एक गलती से पार पटक लो, दो की जरूरत नहीं है। ऐसे ही यहां लिखा है कि दुखे न लभते दुखम द्वौ अनर्थौ प्रपद्यते, दो अनर्थ हो गया, एक तो प्रिय व्यक्ति मर गया और एक उसके ऊपर शोक किया। नाशु कुर्वंती ये दृष्टिया, जो आदमी इस वास्तविकता पर विचार करता है और आंखों में आंसू नहीं लाता है वह व्यक्ति विचारवान है, क्योंकि वो जानता है कि इन आंसुओं से अब कोई पार तो पड़ने वाली नहीं, मरने वाला तो मर गया। शरीर पर और मन पर कोई बीमारी वगैरह आ जाए या कोई शोक चिंता की कोई बात हो जाए तो जहां तक वो यत्न तो करे, पर यत्न करने पर भी वो बात नहीं बैठती है तो जो है शोक तो न करे। शरीर में बीमारी आ गई तो भेषज्यम दवाई ले, पर दवाई देते लेते हुए भी यदि वो बीमारी ठीक नहीं होती है तो शोक करने की जरूरत नहीं है। प्रज्ञया और आत्मज्ञान से, शास्त्र ज्ञान से, सत्संग ज्ञान से मानसिक दुखों का नाश करना चाहिए। अपने शरीर के बारे में सोचना चाहिए कि शरीर तो अनित्य है, इसकी जिस दिन मृत्यु होगी उसको पहले से ही समझ लेना चाहिए कि एक दिन इसकी मृत्यु तो होगी, मृत्यु की तरफ जा रहा है, वहीं जाकर ये शरीर समाप्त तो होगा। जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ज्यादा आते हैं और वो सब में आते हैं, ऐसा कोई संसार में प्राणी है ही नहीं जिसके अंदर दुख न आता हो। एक एक बार सभी में बीती, तू जाने नर मुझ में बीती, सब में बीतती है। ऐसी अवस्था में मनुष्य को विचार से काम लेना चाहिए। त्यज्यन्ते दुःखम् अर्था हि पालने नचते सुखा। सुखदेव, ये संसार के लोग देखते हैं कि पैसे में बड़ा सुख है, अरे पैसा मिल जाएगा तो दुख हो जाएगा, पैसे को प्राप्त करेंगे तो उसमें दुख होगा और खर्च करेंगे तो दुख हो जाएगा। कहां ऐसी जगह है कि जहां पैसे से आराम मिलता हो, सुख मिलता हो? कहीं नहीं है। अन्याम अन्याम धनावस्थाम प्राप्य वैशिषिकीम नराम अतृप्ता यान्ति विध्वंसम। जितना जितना धन बढ़ता है त्यों त्यों उसकी इच्छाएं भी बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते अतृप्त होकर के मनुष्य मर जाता है। इससे ज्यादा और क्या दुख की बात होगी। मनुष्य जंगल में जाए और वो नई 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 घास को खोजे, यूं ये भी नया घास है, ये भी लो, ये भी नया घास है, ये भी नया घास है, इतने में ही घास के अंदर छिपा हुआ एक व्याघ्र है, सिंह है, आकर के दबोच लेता है। ऐसे ही संसार में इस वस्तु में सुख है, इस व्यक्ति में सुख है, इस घटना में सुख है, ऐसे सुख की तलाश के अंदर मृत्यु राधाए गच्छति, बीच में मृत्यु पकड़ लेती है, वो चली जाती है। मृत्यु अवश्य आएगी। शोक से बचने के उपाय मनुष्य को करना चाहिए। मेरे को जो समझ में आता है सुखदेव समय बताता हूं, शब्द स्पर्शे च रूपे च गंधे च रसने सुसे, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इनका सेवन भोग बुद्धि से मत करो, बस आपको फिर कभी शोक नहीं होगा। अध्यात्म के अंदर डूबे रहो, नेत्रों से हाथ और पैर की रक्षा करो, मन से नेत्रों की और कान की रक्षा करो, और अध्यात्म विद्या से वाणी की और मन की रक्षा करो। अर्थात मन से संकल्प वो करना चाहिए जो हमारे अध्यात्म विद्या से जुड़ी हुई बात हो। भगवान का ध्यान कैसे करें, निर्गुण का करें कि सगुण का करें, हमारे अंदर कैसे संकल्प आए। वाणी बोलो तो भगवान से जुड़ी हुई वाणी बोलो, मन से चक्षु और नेत्र कान को देखो, हमारे नेत्र कहीं खराब भावना से तो कहीं किसी पर नहीं जा रहे हैं, कान से हम किसी की निंदा तो नहीं सुन रहे हैं, ऐसे मन के नियंत्रण में रखो, तुम्हारे अंदर शोक नहीं होगा। नारद जी ने कहा कि देखो, जब मनुष्य सुख को दुख और दुख को सुख समझता है तब जो है उसके शोक को कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए मनुष्य को अध्यात्म विद्या की प्राप्ति में अपनी आत्मा का अनुसंधान करना चाहिए। देखो इस आत्मा में न तो कोई बीमारी है, न कोई मरता है, न कोई अलग होता है, न कहीं कहीं जाता है, न ये विमुख होता है, कुछ नहीं होता, आत्मा एक जैसा रहता है। इतना बड़ा आनंद का खजाना रहते हुए आत्मा से लोग अपरिचित रहते हैं। रोग है वो शरीरों को ऐसे ही खाते हैं जैसे तीक्ष्ण बाण एक साथ छोड़ दें वो शरीर को खाने लगते हो। शरीर की बीमारी है, मृत्यु से कष्ट कब होता है, जब वो जीने की इच्छा रखता है। यदि जीने की इच्छा न रखे तो मृत्यु का उसको कष्ट नहीं होता। प्राय व्यक्ति समझता है कि मैं मर रहा हूं, मृत्यु से मुझे दुख हो रहा है, मृत्यु से नहीं हो रहा है। मृत्यु तो सृष्टि का अनिवार्य पोषक तत्व है। जिस प्रकार से नदी का प्रवाह उल्टा नहीं चलता है, इसी प्रकार से मनुष्य की आयु मृत्यु की तरफ ही चलेगी, वो उल्टी नहीं चलती। तो मृत्यु से घबराने की जरूरत नहीं है, जीने की आशा खत्म करके संसार में रहना चाहिए। बहुत से लोग संसार के अंदर बड़े बुद्धिमान हैं, चतुर हैं और हर काम को समझदारी से करते हैं, फिर भी असफल हो जाते हैं। और कई ऐसे महामूर्ख हैं, निर्गुण हैं, पुरुषाधम हैं, परंतु फिर भी उनके पास बहुत सी चीजें बड़े सुखी दिखाई देते हैं। कोई आदमी किन प्राणियों की हिंसा में लगा हुआ है और लोगों को धोखा देता है और उसके पास इतने सुख हैं कि सुख भोगते भोगते वो बुढ़ा हो जाता है, सुख की कमी नहीं। और कई ऐसे बेचारे धर्म के ऊपर रहते हैं और बड़े सच्चाई से ईमानदारी से चलते हैं, उनके सामने बड़ा कष्ट आ जाता है, उनका खाने पीने का भी नहीं मिलता। तो उस समय मनुष्य देखता है कि धर्म करने से क्या हुआ, देखो पापी आदमी का इतना बड़ा सुख है, पर वो ये नहीं समझता कि इसके पीछे रहस्य क्या है। इसके पीछे रहस्य है प्रारब्ध। अपराधम समाचक्ष्व पुरुषस्य स्वभावतः, पुरुष का जो अपराध, अपराध माने पहले किया हुआ प्रारब्ध है, वो धर्मात्मा पुरुष के सामने अभी प्रकट नहीं हो रहा है। कोई ऐसा प्रारब्ध है उस कारण से कठिनाई आ रही, इसलिए मनुष्य को भाग्य से मिलने वाली चीज है उसके अनुसार अपने कर्तव्य को भूलना नहीं चाहिए कि पाप करेंगे तो अच्छी चीज मिल जाएगी, पी चीज मिलेगी पिछले जन्म के अनुसार। देखो बहुत से लोग कितनी कितनी आराधना करते हैं, देवताओं की आराधना करते हैं, मंगल का काम करते हैं, लेकिन उनके पुत्र नहीं होता। और कई कई लोग चाहते ही नहीं कि हमारे बेटा ना हो, कहीं बेटा हो जाता है। तो ये तो सब भाग्य के ऊपर है। बहुत से ऐसे दुष्ट पुरुष हैं जिनके माता पिता ने खूब धन छोड़ दिया, विपुलान अभिजायन्ते और लब्धास्तैरेव मंगलै, और खूब भोगों के अंदर ही पड़े रहते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए। निर्दग्धम परदेहेपि परदेहम चलाचलम, जैसे कोई नौका है, वो नौका डगमगा गई, टूटने लगे, दूसरी नौका आ गई, तत्काल उसमें बैठ जाते हैं। ऐसे ही जब हमारा शरीर इन अवस्थाओं में अब रहने लायक नहीं होता है, तब उसको दूसरा शरीर मिल जाता है। इसलिए यहां पर चिंता करने की क्या बात है, मनुष्य को निश्चिंत रहना चाहिए। मनुष्य का सोचा हुआ ही संसार में सब होता रहता तो हे सुखदेव, मनुष्य कभी बुढ़ा नहीं होता, कभी बीमार नहीं होता, कभी दरिद्री नहीं होता, कभी नहीं मरता, ऐसे ही उसके सामने जीवन में अवस्था आती नहीं। ये आती है तो इसका मतलब है कि मनुष्य जो है संसार में कुछ काम करने के लिए, मन प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। कर्म करने में ही स्वतंत्र है, प्राप्त करने में स्वतंत्र नहीं है। देखो कई कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे प्राणी हैं, मनुष्यों में भी हैं जो बहुत दरिद्री है, उनके पास भयंकर बीमारी है, अच्छा रोग है, पशु हिंसा इत्यादि सब रोग में पड़े हैं, उनकी कोई चिकित्सा नहीं होती, वही अपना भोग भाग करके मर मरा करके रोगी को पूरी कर लेते हैं। और कई संसार में ऐसे हैं तो अति निपुण वैद्य, बहुत अच्छे वैद्य जी है, कुशल है, सब कुछ है, लेकिन वो वैद्य जी खुद व्याधि से घिरे रहते हैं। इसलिए भाई देखो सुखदेव जी, न धनेन, न तो कोई आदमी धन से सुख पाएगा, न राज्येण, न उग्रेण तपसा, कोई इनसे सुख नहीं पाएगा। सुख पाएगा अपने स्वभाव को सुधारने से, और सुख पाएगा वो सत्संग करने से। देखो एक ही मनुष्य है, एक आदमी तो पालकी में बैठता है और चार आदमी उसको उठाते हैं, क्या है ये प्रारब्ध का खेल नहीं तो क्या है? क्या वो पालकी उठाने वाले पालकी में बैठने की इच्छा नहीं रखते हैं, पर उनको मिलता नहीं है? और जो पालकी में बैठा हुआ है, क्या उसको पालकी उठानी आती नहीं है, पर उसका प्रारब्ध है? इसलिए इन बाह्य जंजालों को छोड़ो, परम भावम कांक्षामि यत्र नावर्तते पुनः। आप यही आकांक्षा रखो कि फिर आगे हम नहीं जन्म लेंगे। सुखदेव जी महाराज ये उपदेश सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, महाराज अब तो मैं उस अक्षय लोक को ही जाऊंगा जहां मनुष्य में किसी प्रकार की कमी नहीं आती। हे नारद जी महाराज, क्या मैं चंद्रलोक में जाऊं? नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे क्षयता में आती सोमे सुर गणैर यथा। चंद्रमा भी अमृत पिया हुआ है, फिर भी ये क्षीणता को प्राप्त होता है, 15 दिन कम होता है, 15 दिन ज्यादा होता है, चंद्रलोक में नहीं जाएंगे। और कोई लोक में जाओगे? ये तारा है बहुत ऊंचे, बड़े चमकीले, सूर्य चंद्रमा से भी बड़े, पर तारे भी टूटते हैं। रात्रि में देखोगे तारे वो टूटता है। वो एक तारा इतना विशाल होता है कि उसमें कितनी सूरज समा जाए, और यदि वो तारा पूरा पृथ्वी पर गिर पड़े ना तो पृथ्वी तो जल करके राख हो जाए, इतना बड़ा होता है तारा। क्या तारा तारा टूटता है तो कहां जाए? ओ ये सूर्य लोक बहुत अच्छा है, तत्र वत्स्यामि, सूर्य लोक में जाकर रहूंगा। ऐसा निश्चय करके सुखदेव जी महाराज ने नारद जी से आज्ञा मांगी, पिता व्यास जी के पास गए, व्यास जी की परिक्रमा की, प्रणाम किया। कहां जा रहे हो बेटा? सुखदेव जी ने कहा, पिताजी नारद जी ने उपदेश दिया, मेरा तो संसार में मन ही नहीं लगता, वैराग्य हो गया, मैं तो सूर्य लोक में जाऊंगा। अरे बेटा, भो भो पुत्र स्थियताम तावद अद्य यावत चक्षु प्रीणयामि त्वदर्थे। बेटा थोड़ा सा तुम ठहर जाओ, मैं तुमको जी भर के निहार लू, आज नहीं तुम कल चले जाना। सुखदेव जी ने कहा, इसी का नाम मोह है पिताजी, जो कल करेंगे तो आज क्या हो जाएगा? जब हमको इस मार्ग में चलना है तो उसमें आज और कल का भेद हम रखें क्यों पिताजी? मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तो आज ही जाने का विचार करता हूं। पिताजी से आज्ञा लेकर सबसे पहले कैलाश पर्वत पर गए। बड़ा विलक्षण कैलाश पर्वत है, वहां जाकर एकांत में बैठे, ऐसी जगह पर बैठे जहां कोई वनस्पति नहीं, वहां कोई जीव जंतु नहीं, एकदम बैठ गए। बैठने के बाद फिर वहां वो जोर जोर से हंसने लगे, हा हा हा, ऐसे ऐसे हंसने लगे। क्यों हंसे जी, पागल हो गए थे क्या? कि ना ना ना, उन्होंने अपने अंदर अपने स्वरूप का ध्यान किया तो इतना आनंद का अनुभव हुआ, इतना आनंद का, वो आनंद समाया नहीं, वो फूट पड़ा ही, आनंद समाया नहीं, जोर से हंसने लगे। प्रजहास है ततो हासम सुख संप्रेक्ष तत्परम। कोई दूसरा तो था नहीं, किसी को दिखाना था नहीं, क्या दिखाना इसमें, खूब खूब हंसे। फिर वहां अकस्मात नारद जी आए, सुखदेव तुमको तो बड़े आनंद की अनुभूति हुई रे, क्या हुआ? कहने लगे, महाराज आपका दिया हुआ ज्ञान था, अंदर से आनंद के स्रोत बहने लगे। अब क्या विचार है, मुझे यहां थोड़ी रहना है, कैलाश पर्वत पर थोड़ी रहना है, मुझे तो और आगे जाना है। ये और आगे ध्यान करते करते वो सूक्ष्म वायु बन गए, कैलाश पर्वत से वायु होकर के ऊपर के लोक में जाने लगे। और वहां ऊपर के लोक में देवता, गंधर्व, अप्सराएं सब उनको दिखाई देने लगी। तो दो अप्सराएं खास इंद्र की, वो मलय पर्वत पर गए तो दो अप्सराएं उर्वशी और पूर्व चित्ती, ये दोनों अप्सराएं आपस में बात करते हैं। ओहो बुद्धि समाधानम, देखो देखो बहन, इसको कुछ मत कहना, ये साक्षात सुखदेव जी महाराज, बहुत दिनों तक इन्होंने वेदाभ्यास किया है और फिर नारद जैसे महापुरुष के पास रहकर इन्होंने सत्संग का ज्ञान लिया है, पिता की सेवा की है, ऐसे जो महापुरुष हैं इनकी तपस्या में कोई बाधा डाल भी नहीं सकेंगे, डालेंगे तो अपना ही नुकसान होगा, ऐसे महापुरुष को देखकर उनको बारंबार प्रणाम करना चाहिए। ऐसे उनको प्रणाम किया। अब सुखदेव जी महाराज और आगे निकल गए। इधर जो है सुखदेव जी महाराज ने सब इनको कहा, अप्सराओं को और देवताओं को, सुनो सुनो आप लोग सब मेरी बात सुनो, मेरे पिता मेरे पीछे पीछे आएंगे और वो जोर जोर से चिल्लाएंगे, अरे सुखदेव, अरे सुखदेव, अरे सुखदेव, बिचारे मेरे लिए विबल हो जाएंगे, तो आप इतनी सी बात कह देना कि वो सुखदेव इसी रास्ते से गया है। और हमने सुखदेव को देखा है, इतनी बात आप मेरे पिताजी को अवश्य कह देना। तो नदियों ने, समुद्र ने, सब ने कहा कोई चिंता मत करो सुखदेव जी महाराज, आप अपने रास्ते पर सीधे चलते रहो। आगे चलते 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 सुमेरु पर्वत की तरफ चले गए। फिर उस पर्वत को आगे जाकर जहां जहां गए वहां पर सब महापुरुषों ने बहुत अच्छा साधु 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 कहने लगे। इधर भाई वेदव्यास जी का मन नहीं लगा कि मेरा पुत्र कितना ज्ञानी, उसका दर्शन करता था, उसके दर्शन से मुझे मेरी आत्मा का बोध होता था। हे मेरा सुखदेव कहाँ हो कहाँ हो, खूब चिल्लाते 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 उसी मार्ग से आए। तो भो आप बोला ना रे, संस्कृत में बोले भो भो। तो सुखदेव जी बहुत ऊंचे लोक में गए, भो। दोनों ने एक दूसरे की आवाज को पहचान लिया। तब फिर जो है व्यास जी महाराज बड़े व्यथित हुए, तो बीच में फिर भगवान शंकर मिले। कहने के व्यास जी महाराज, आपने तो मुझसे कहा था कि ऐसा लड़का हो मेरा कि जो आकाश के समान निर्लेप हो, जो वायु के समान सब कुछ। भगवान शंकर ने ऐसा आश्वासन दिया और साथ साथ में एक सुखदेव का प्रतिबिंब दे दिया कि छाया सुख है, इसको रख लो आप, इसके अंदर सुखदेव जी के सारे गुण आ जाएंगे। छायां पश्यन् समावृत्तः स मुनिः परया मुदा। ओ बोलेगा चलो यही सही, हमारे क्या है। जैसे भाई कोई आदमी चला जाए तो उसकी फोटो रखते हैं ना अपने, ये छाया चित्र फोटो, ऐसे ही सुखदेव जी की एक प्रतिमूर्ति, सजीव प्रतिमूर्ति सुखदेव जी महाराज की व्यास जी को भगवान शंकर ने दे दी। और फिर सुखदेव जी महाराज तो अपने लोक में गए और पिताजी अपने स्थान पर रह गए। सुखदेव जी महाराज का जो ये चरित्र सुनता है उसको परम गति मिलती है। अब युधिष्ठिर जी महाराज दूसरा प्रश्न करते हैं कि गृहस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, भिक्षुक हो, ये अपने अपने आश्रम में कोई विशेष सिद्धियां प्राप्त करना चाहें तो कैसे प्राप्त करें महाराज, किस देवता की पूजा करें, इससे संबंधित प्रश्न करते हैं। तो फिर पितामह इनका बड़े विस्तार के साथ उत्तर देते हैं। श्रीमान नारायण नारायण नारायण
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 श्रीमान नारायण नारायण